हम प्रेरितों काम में सीरीज में चल रहे हैं और हम 18 अध्याय तक पहुंच गए हैं। पिछले जब हमने समाप्त किया था तो समाप्त करते हुए हम प्रेरितों काम उसके 17 अध्याय में थे और 17 अध्याय में खास उसे एक बात पर हमने विचार किया था कि पॉल उस किस प्रकार से जब एथेन में जाता है और एथेन में जाकर के वो बहुत सारे उस स्थान में मूर्तियों को देखता है तो वहां पर एक ऐसी मूर्ति को देखता है जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। और तब वो उस मूर्ति के बारे में बताता है, कहता है कि देखो तुम जिस अनजाने ईश्वर की आराधना करते हो मैं उसके बारे में बताता हूँ वो कौन है अनजाना परमेश्वर अनजाना ईश्वर। और तब वो प्रभु यीशु मसीह का संदेश देता है और तब वो उस अनजाने ईश्वर के बारे में चार मुख्य बातें कहता है जो मुझे और आपको जाना बहुत ही जरूरी है। पहली चीज, पहली बात, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सृष्टि करता है, जिसने मेरे और आपकी संसार की सृष्टि की है। संसार में कई लोग कई तरह के विचारधारा में लेते हैं। कोई कहता है कि कर्ण से कुछ हो गया, मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। कोई कहता है किसी और चीज से मनुष्य बन गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो अद्भुत काम करता है। मनुष्य कभी भी कुछ नहीं से कुछ नहीं बना सकता, उसको कुछ बनाने के लिए उसके हाथ में कुछ का होना जरूरी है, अर्थात जब उसके हाथ में कुछ हो तभी वो कुछ बना पाएगा। लेकिन एक परमेश्वर ही है जो कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है। और इसलिए जब तरह तरह की विचारधाराओं में के लोगों के बीच में हम रहते हैं तो हमें जानना है कि अगर वो सृष्टि करता है तो सर्व अधिकारी परमेश्वर है, उसके हाथ में सृष्टि उसके हाथों में है, उसके हाथ की रचना। और बाइबल में बार बार इस बात का वर्णन किया गया है, भजन संहिता कई बार वर्णन करता है, भजनकार वर्णन करता है, यशाय में वर्णन है और हम परमेश्वर के वचन में कई स्थलों में इस बात को देखते हैं। तो हम सबसे पहली बात देखते हैं कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। और आज कितने लोग हैं जो ये अपने सृष्टि कर्ता को नहीं पहचानते। हाँ, किसी ने बनाया और इसीलिए मनुष्य परमेश्वर का खोजी तो है लेकिन परमेश्वर को नहीं पाने पा रहा क्योंकि भटक रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि उसको किसने बनाया है। और इसीलिए कहीं इधर जाता है कहीं उधर जाता है, किसको खोजता है कहीं इसको खोजता है। लेकिन जिस दिन मनुष्य के अंदर ये बोध हो जाता है, उसकी आंखें खोल जाती हैं कि उसको बनाने वाला वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, तो उसके जीवन में एक परिवर्तन एक बदलाव आ जाता है और एक आशा की किरण उत्पन्न होने लगती है। तो सबसे पहली बात मनुष्य को जाना है, आपको और मुझे जाना है कि मुझको और आपको किसने बनाया है, किसने रचा है, किसने सृजा है, मेरे और आपके अंदर श्वास किसने डाला है, कौन मेरे और आपके जीवन को नियंत्रित करता है। मेरे प्रियो इस बात को जानना जरूरी है। सो परमेश्वर, पौलुस कहता है परमेश्वर सृष्टि करता है। दूसरी बात वो कहता है कि परमेश्वर संचालन करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को संचालित करता है, वो हमारे जीवन को संचालित। हम प्रेरित काम उसके 17 अध्याय को देख में हमने पिछली बार देखा था और उन्हीं स्थल को मैं केवल दोहरा रहा हूं, इसलिए पद नहीं ले जा रहा हूं। लेकिन 17 अध्याय में 24 पद से आगे इन सारी पदों का वर्णन है। लेकिन वो संचालन करता है, मेरे और आपके जीवन को संभालने वाला है, श्वास देता है। अगर वो जिस समय चाहे वो अगर वो हमारे जीवन से श्वास ले ले तो मनुष्य के पास कुछ नहीं रहता। जब तक उसने चाहे मेरे और आपके जीवन में श्वास है वो संचालन करना है। और मेरे प्रियो, बिना परमेश्वर के कोई भी मनुष्य संसार में जीवित नहीं रहता। अपनी शक्ति से, अपने धन से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समर्थ से, अपनी शक्ति से, किसी चीज से वो इस संसार में स्वयं को जीवित नहीं रखता। जब तक परमेश्वर चाहता है परमेश्वर उस मनुष्य के अंदर श्वास सकता है और श्वास के द्वारा वो मनुष्य जीवित रहता है, अर्थात मनुष्य को संचालन करने वाला परमेश्वर है, उसको जीवित रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्व अधिकारी सर्व सामर्थी है। तब उसके साथ साथ तीसरी मुख्य बात जो हमने देखी थी, वो परमेश्वर जो एकमात्र सच्चा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा उद्धार करता है, यीशु एकमात्र वो व्यक्ति है जो उद्धार करता है, कोई और नहीं, कोई और नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का मार्ग जीवन और सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंचता। और वो उद्धार करता है, क्यों उद्धार करता है, केवल वो रास्ता बताने वाला नहीं है लेकिन उसने कहा मार जीवन सत्य मैं ही हूं। वो जब मनुष्य पाप में नाश हो रहा था और मनुष्य के सारे कार्य उसका परिश्रम उसके प्रयास उसकी धार्मिकता धर्म रीति विधियां, उसका पूजा पाठ, उसका सब कुछ व्यर्थ जा रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे में परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर यीशु में होकर संसार में आ गए। उन्होंने मनुष्य के बीच में रहा। इसलिए हम कहते हैं उसका जीवन जिसको लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, लोगों ने जाना, लोगों ने पहचाना परखा, और वो यीशु अंत में मनुष्य के लिए, मेरे और आपके लिए, पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, क्रूस पर बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन छूटा। वो मृत्यु उसको अपने अधिकार में नहीं रख सकी, और इसलिए वो एकमात्र उद्धार करता है। इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ना तो कोई गुरु है, ना कोई विशेष व्यक्ति है, कोई भी नहीं, कोई पुरुष नहीं। अगर पुरुष एक है तो वो पुरुष, वो मनुष्य केवल यीशु मसीह है, जो पवित्र है, जो मुर्दों में से जी उठा है, जो जीवित है, जो सर्व अधिकारी है, जो सर्व सामर्थ्य है। और उस यीशु पर विश्वास करना मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी जो अनिवार्यता है। बिना उसके द्वारा कोई भी परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है बिना यीशु के द्वारा कोई भी परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंचता है। और हम बार बार इन पदों को परमेश्वर के वचन में कई जगह देखते हैं। पिछली बार भी हमने कुछ पदों को देखा था। और चौथी बात, अगर यीशु उद्धार करता है, यदि यीशु सृष्टि करता है, यदि यीशु का संचालन करने वाला है, जीवन को संभालने वाला है, और यदि यीशु उद्धार करता है तो यीशु का अधिकार है कि वो न्याय भी करने वाला है। वो न्यायी परमेश्वर है, वो सच्चा न्याय उसके हाथ में है। और एक दिन हर एक मनुष्य को उसके सामने न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसके 22 पद में यीशु को यह अधिकार दिया गया है कि उसका वो न्यायिक मनुष्य का न्याय करे। पिता ने पुत्र को यह अधिकार दिया है कि समस्त मानव जाति का वो न्याय करे। दूसरा ग्रंथ उसका 5 अध्याय उसके 10 पद में एक दिन हर एक मनुष्य को खड़ा होना पड़ेगा ताकि मनुष्य का परमेश्वर न्याय करे। सो प्रभु यीशु मसीह न्याय परमेश्वर है, और इसलिए मुझे और आपको इसको हल्के में नहीं लेना। हमें और आपको अपने जीवन को इस तरह से तैयार रखना है कि अगर आज आंख बंद हो जाए, क्या मैं उसके न्याय के सामने खड़ा होने की तैयार होऊंगा। मेरे प्रियो, हमें पाप से खिलवाड़ नहीं करना, हमें झूठ छल धोखे के जीवन को नहीं व्यतीत करना। अरे हम कल पश्चाताप कर लेंगे, कल लौट जाएंगे, कल ऐसे कर, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जानते हमारे जीवन का अंतिम क्षण कौन सा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सहायता करे कि हम इस बात को समझ सके। फिर से मैं कह रहा हूं, एक मनुष्य, पौलुस 17 अध्याय में बहुत जोर देता है इस बात पर, और 17 अध्याय में जब वो एथेन में जाता है, हमने 3 बातों को देखा था, एथेन में देखा, उससे पहले बीरिया की कलीसिया को देखा, उससे पहले थिसलेनिक कलीसिया को देखा, लेकिन एथेन में उसने जाकर के इस बात को बहुत ही स्पष्ट किया है कि यीशु मसीह कौन है। और इसलिए मुझे और आपको जानना है यीशु मसीह कौन है, उसके पास क्या अधिकार है, और उसे मुझे किस प्रकार से मेरा प्रत्युत्तर प्रभु यीशु मसीह के प्रति होना है। या तो मैं उसको स्वीकार करूं तो उसके न्याय से बच जाऊं, अगर मैं तिरस्कार करूं तो उसके न्याय में खड़ा होकर के मैं दंडित हूं या दोषी ठहरूं। तब फिर हमने पिछली बार को 18 अध्याय के में कुरिन्थी कलीसिया में भी प्रवेश किया था। अब उसके बाद पौलुस किस प्रकार से कुरिन्थी कलीसिया में जाता है, लेकिन आइए थोड़ा सा मैं फिर से उसको दोहराना चाहूंगा। हमने कुरिन्थी की कलीसिया के बारे में कुछ परिचय दे दिया था, अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज कुछ बात को देखने के बारे में 18 अध्याय के पहले 4 पद को। इन बातों के पश्चात पौलुस एथेन छोड़कर कुरिन्थ चला गया, और उसे अक्विला नामक पुंतुस निवासी एक यहूदी मिला जो हाल ही में अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा राजाज्ञा दी थी। वो उनके यहाँ गया, और इसलिए कि उसका भी वही व्यवसाय था और वो उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, क्योंकि व्यवसाय से वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस के साथ मिल गया और पौलुस के साथ तंबू बनाने लगा। 4 पद, और वो प्रत्येक सप्त के दिन आराधना में तर्क वितर्क करके यहूदी और यूनानी को समझाने का व्रत करता था। अब ये अक्विला प्रिस्किल्ला, मैंने पिछली बार बहुत ही थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। पिछली बार एथेन के बारे में बताया था, एथेन क्यों विशेष रीति प्रसिद्ध था, एथेन में कैसे वहां पर माराथन रेस का आरंभ हुआ था, उन सारी बातों को मैंने आपके साथ बांटा था। लेकिन आज हम थोड़ा सा अकिल्ला प्रिस्किल्ला के बारे में देखना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा बाइबल में एक ऐसा कपल है, ऐसा परिवार है जो मेरे और आपके लिए शिक्षा के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी है। बाइबल में कई सारे परिवारों का वर्णन है जो पौलुस के सहकर्मी रहे। अकिल्ला प्रिस्किल्ला रोम में रहते थे और ऐसा लगता है कि रोम में रह करके इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, क्योंकि जब हम प्रेरित काम उसके पहले अध्याय में और उसके दसवें पद में पढ़ते हैं तो पहले अध्याय के दसवें पद में बहुत सारे लोग थे, उसमें कुछ रोमी प्रवासी भी थे जो शायद यहूदी थे या यहूदी मत को जिन्होंने स्वीकार किया था। आज लोग धर्मांतरण की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग अभी नहीं है, आज से जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे उस समय से आरंभ हो गया था। और प्रभु यीशु मसीह जैसे ही क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन झूठे और स्वर्ग में उठा लिए गए, अब पहली मंडली बैठी हुई है। उस मंडली बहुत जगह जगह से लोग थे और वहां मैंने कहा कि दसवें पद में लिखा हुआ है कि रोमी प्रवासी और उसके साथ साथ यहूदी और बहुत सारे लोग जो यहूदी मत से उन पर आए थे वे वहां पर थे और उन्होंने सुसमाचार को सुना। पौलुस अभी तक रोम में नहीं गया था, उन्होंने सुसमाचार को सुना और सुसमाचार को सुन करके वापस रोम में आते हैं और वहां पर उन्होंने सुसमाचार की साक्षी दी और वहां पर अब बहुत सारे विश्वासी हो गए थे। और ये अकिल्ला प्रिस्किल्ला ने भी वहां पर विश्वास किया और ये एक विश्वास बढ़ते हुए एक ऐसा परिवार बन गया था कि जो बहुत ही अधिक प्रभु यीशु मसीह के साथ और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करके सुसमाचार को बांटने में लगा था। लेकिन जब यहां पर ये जिसके बारे में क्लोदियस जब शासन में आया तो उसने क्या करा, जितने भी रोम में यहूदी थे उनको निकाल दिया, उनको कहा तुम रोम को छोड़कर चले जाओ। एक सतावनी आ गई, बहुत बड़ा प्रोसिक्यूशन हुआ था जो यहूदी के ऊपर हुआ था और उस समय बहुत सारे यहूदी लोग वहां से निकल आए और तब ये लोग भी उस स्थान से निकल करके अकिल्ला प्रिस्किल्ला यहां पर एथेन में आते हैं और तब एथेन के निकलते हुए फिर कुरिन्थ में आते हैं, वहां पर इनकी मुलाकात पौलुस से होती है। अकिल्ला नाम का अर्थ जो है उसके नाम का अर्थ है ईगल, उकाब, उकाब। और बाइबल में उकाब पक्षी बहुत विशेष पक्षी माना गया है, उसकी विशेषता मानी गई। इसीलिए जब हम आरंभ में निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं, जब परमेश्वर ने मर्सी सीट दया के ढक्कन को बनवाया था, वो वाचा के संदूक को, तो उसमें उकाब के पक्षी अपने सर को झुकाए हुए और पर्दों से पंखों से मुंह ढापे रहते थे, क्योंकि उनको दया का चिन्ह माना जाता है। उसकी कई सारी विशेषताएं हैं उकाब की, इसीलिए हम जब गाते हैं गीत को परमपिता के कि उसने उकाब की नाई उड़ना सिखाया हमें। सो उकाब की तुलना बाइबल में बहुत ही अच्छी रीति से है। और प्रिस्किल्ला नाम का अर्थ है मनमोहक, प्रिस्किल्ला का नाम का अर्थ है, प्रिस्किल्ला उसकी पत्नी है, मनमोहक इसके नाम का जो वास्तविक अर्थ है वो लतीनी नाम है उसका अर्थ है। अब इतना सुंदर परिवार है, इनके नाम के द्वारा, नाम के द्वारा हम कई बार परमेश्वर के गुणों को पहचानते हैं। इसलिए जब हम बाइबल के नामों को रखते हैं तो प्रार्थना के साथ और प्रार्थना करते हैं ताकि वो नाम के गुण, परमेश्वर के गुण उन हमारे संतानों में और लोगों में जीवन पाए जा सके। ये परिवार इतना एक अच्छा परिवार अब विश्वास करके वहां पर पहुंचता है। जब ये वहां पर आते हैं तो इनके जीवन में कुछ खास बातें, हम इस परिवार से कुछ बातों को देखना चाहेंगे जो अकिल्ला और प्रिस्किल्ला के जीवन पाई जाती हैं। पहली बात, ये पौलुस के साथ सुसमाचार में सहभागी हो गए। जब ये वहां पर आए, अब इनका व्यवसाय था, क्या करते थे? अच्छा, एक और खास बात थी उस समय यहूदियों के लिए, एक बहुत विशेष बात, एक नियम था कहना चाहिए, और नियम यह था कि ना केवल व्यवस्था को सीखते थे, व्यवस्था उनको सीखनी पड़ती, लेकिन व्यवस्था के साथ साथ कोई ना कोई ट्रेड वो सीखते थे, कोई ना कोई कार्य वो सीखते थे, चाहे तंबू बनाने काम हो, चाहे लोहा का काम हो, कई सारे काम है, उनको कोई ना कोई ट्रेड सीखना पड़ता था, और ताकि वो अपने वो ट्रेड को सीखते हुए अपना व्यवसाय करें और अपने जीवन को अर्जित कर सके। पौलुस ने भी ऐसी करा था, इसीलिए पौलुस का भी वो व्यवसाय था और पौलुस भी अपनी सेवा तंबू बनाकर करता था, पूरा हफ्ता भर वो तंबू बनाता था और सबत के दिन जाकर के वो जाकर के आराधनालयों में वहां वचन का प्रचार करता था, लोगों से वाद विवाद करता था। जरूर यत्न उसने 3 साल रहकर गमलील में के चरणों में रहकर के व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह सीखा था। उसी को लोग कहते हैं कि वो सेमिनरी में भी गया, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि उसने एक ट्रेड को सीखा था। अब ये दोनों जन पूरे हफ्ते काम करते थे और उसी से अपनी जीविका को अर्ज करते थे, अर्न करते थे। तो पहली बात, ये एक ऐसा परिवार था कि जो उसके साथ पौलुस के साथ खड़ा हो गया। ये परिवार पूरे सुसमाचार के लिए पौलुस के साथ खड़ा है, न केवल अपने व्यवसाय को देख रहा है, लेकिन व्यवसाय को देख रहा है, न केवल धन कमाने की विधि को देख रहा है, लेकिन वहां से निकल के आया। ठीक है, पौलुस, उसने कहा वो पौलुस भी तंबू बना रहा है, हम भी तंबू बनाएंगे, ठीक है, हम भी अपने पैसे कमाएंगे, पौलुस अपने तंबू, लेकिन उसकी उनकी प्राथमिकता केवल तंबू बना करके अपने धन को कमाना नहीं था, लेकिन उनकी प्राथमिकता थी पौलुस के साथ खड़े होकर के सुसमाचार का प्रचार करना था। पौलुस, पहली बात। दूसरी बात, उनके जीवन में ना केवल के पौलुस के साथ सुसमाचार के लिए खड़े हो गए, उसके साथ कांधे से कांधे मिलाकर खड़े हो गए। दूसरी बात, पौलुस के साथ दुख उठाने के लिए तैयार हो गए। पौलुस के साथ दुख, अभी हम उस पद को देखेंगे पौलुस किस प्रकार से इनके बारे में वर्णन करता है, 18 अध्याय के 25-26 पद में इनके बारे में पाते हैं। लेकिन आइए रोमियो उसका 16 अध्याय में 3 और 4 पद में पौलुस क्या कहता है उनके बारे में, प्रिस्किला अकेला के बारे में पौलुस क्या कहता है 3 और 4 पद में। प्रिस्का और अकेला, अब अकेला पीछे है, प्रिस्का पहले हो गई है, को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, पहली बात कह रहा मेरे सहकर्मी है, नमस्कार। दूसरी बात, जिन्होंने मेरे प्राण रक्षा के लिए स्वयं अपना जीवन जोखिम में डाल दिया है। सुसमाचार कार्य के लिए पौलुस के साथ इस प्रकार से खड़े हो गए थे कि उन्होंने अपने जीवन को, अपने प्राण को जोखिम में डाल दिया था। ये ऐसे थे, न केवल मैं वरन गैर यहूदियों की सारी कलीसिया भी उनका धन्यवाद करती है, धन्यवाद करती है। और ये उनका जीवन ऐसा था कि वे धन्यवाद के पात्र बन गए, धन्यवाद के पात्र। अब पौलुस इस परिवार को, इस कपल को, इस जोड़े को धन्यवाद का पात्र बना रहा है। कितनी पौलुस के लिए कितनी अधिक खुशी की बात होगी। जब मैं इस बात पर विचार कर रहा था तो मैं विचार करते करते सोचता था कि कितना अच्छा हो कि आज काश कलीसियाओं में ऐसे परिवार हो सके जो प्रभु के सेवकों के साथ केवल ललो चप्पो करने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई के साथ सुसमाचार के लिए सत्य को जानते हुए, सच्चाई को जानते हुए सत्य निष्ठा के साथ खड़े हो सके, और सच में ताकि पौलुस जैसे उनका धन्यवाद कर रहा है वे भी उनका धन्यवाद कर सके। 3 बातें मैंने कही हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन 3 बात। उनके पास, उसके पास एक ऐसा परिवार जो पौलुस के साथ खड़ा है, ऐसा परिवार जो पौलुस के साथ दुख उठाने के तैयार है। ठीक है, मैं पौलुस के साथ जाए, पौलुस तरह तरह के दुख पौलुस ने उठाए। अगर हम पढ़ेंगे आप बीच में तो पता चलेगा उसको धकेला गया, घसीटा गया, मारा गया, बंदीगृह में डाला गया, दोषारोपण किया गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन वो उसके साथ साथ खड़े रहे, पौलुस की सेवा को प्रोत्साहित करने का कारण बने रहे। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक इस बात को भी मेरे और आपको कहता है कि हमें किस प्रकार से प्रभु के सेवकों के साथ खड़े होते हुए क्या करना है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 17 पद, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों की ये जानकर चौकसी करते हैं कि उन्हें उसका लेखा देना होगा। उन्हें ये कार्य आनंद के साथ करने दो, ना कि आहें भरते हुए, क्योंकि उससे तुम्हें कोई लाभ ना होगा। आनंद के साथ, पौलुस इस परिवार को देखकर आनंदित था, धन्यवादित था। कितना धन्य, क्या आज आप जिस कलीसिया के साथ हैं, जिस कलीसिया में जुड़े हुए हैं, जिस कलीसिया को आपने अपना आत्मिक घर माना है, क्या उस कलीसिया के साथ आप इसी तरह से हैं? आप पूरी रीति समर्पित हैं? पूरी रीति से आप आनंद का कारण है, और जो सेवक आपके साथ है उनके लिए आप आनंद, घमंड और धन्यवाद का कारण बने हुए हैं। तो ये एक ऐसा परिवार है, व्यवसाय में है लेकिन सुसमाचार उसकी प्राथमिकता है। मेरे प्रियो, ये सच है, और मैं बार बार आजकल कहता हूं, मैं इन दिनों को जब देख रहे हैं चारों तरफ परिस्थिति बदलती जा रही है। मैं HL में था, आठ साल मैं एचएल में रहा, और उस समय जब मैं एचएल में रहता था तो मैंने किस प्रकार से प्रभु कलीसिया में रहकर सेवा में सहयोग दिया, मैं प्रभु धन्यवाद था। पर प्रभु की एक स्पेशल बुलाहट थी तब मैं एचएल छोड़कर आया, ऐसे नहीं आया, बुलाहट को सुना तब आया। लेकिन आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने कार्यालय में कार्य करते हुए कलीसिया साथ खड़े हो सके, और हमारी कलीसिया में धन्यवाद उन भाइयों का, ताकि दूसरों सुसमाचार बांट सके और उनको कलीसिया में ला सके। ये लोग ये काम कर रहे थे, और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। मेरा प्रश्न है आपके लिए, क्या आज आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आज आप ऐसा कर रहे हैं? तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तब हमने पिछली बार कुछ और बातों को देखा था। इस कुरिन्थी कलीसिया में जब सुसमाचार प्रचार किया जा रहा था, तो प्रचार करते हुए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन को सुना और बपतिस्मा लिया। और तब उसके बाद पौलुस दर्शन देखता है, और पौलुस को दर्शन में परमेश्वर दास को प्रोत्साहन दिया जाता है, मत डर, प्रचार करता जा, चुप ना रहे, कोई भी तुझ पर आक्रमण ना करेगा, क्योंकि इस नगर में और बहुत सारे लोग हैं, और वो उनके मध्य परमेश्वर का वचन सिखाते हुए डेढ़ वर्ष तक रहा। तब उसके बाद वो आखिर से होते हुए तब आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, 18 पद से लेकर। अब ये लोग आगे होते हुए इफिसियो में आते हैं, 18 पद से लेकर 21 पद तक। अब पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा को समाप्त करने पर है। हम देखते हैं कि तीन उसकी मिशनरी सुसमाचार प्रचार थी, अंताकिया से गया है, जगह 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 होते हुए अब इफिसियो में गया है, और इफिसियो से फिर वो अंताकिया में वापस आएगा, फिर उसके बाद अंताकिया से फिर आपस में फिर तीसरी मिशनरी को यात्रा को आरंभ करेगा। लेकिन हम कुछ बातों को यहां देखना चाहेंगे, 18 पद से लेकर के 21 पद तक। तब पौलुस ने वहां से अधिक दिनों तक रहकर भाइयों से विदा ली, और प्रिस्किल्ला तथा अकुला सहित जलमार्ग से सीरिया को रवाना हुआ। किकिया में उसने सिर मुंडाया, क्योंकि उसने मन्नत मानी थी। अब ये सिर मुंडाने की बात को लेकर के कई लोग कई तरह के प्रश्न करते हैं, क्यों पौलुस ने सिर मुंडवाया था? जब हम गिनती की पुस्तक उसके छठे अध्याय में पढ़ते हैं, तो गिनती की पुस्तक उस छठे अध्याय में एक विधि दी गई थी, या कहा गया था, खास से उन लोगों के लिए जो नाजे जिनको रखा जाता था, जैसे शिमशोन, जिसको परमेश्वर के जन करके अलग करके चुना जाता था, उनके सर पर उस्तरा नहीं लगाया जाता था, वे बाल एक विशेष समय पर उनको बाल काटने की अनुमति होती थी। लेकिन ये जो उसने एक प्रतिज्ञा बांधी थी, यद्यपि उससे संबंधित कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके सामने जब वो आगे बढ़ रहा था, तो उसने कुछ ना कुछ ऐसे प्रतिज्ञा मांगी होगी, अगर ये काम हो जाएगा या मैं वापस अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा। क्योंकि जिस जोखिम में से होके चला जा रहा था, जिसको अपने जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं था, उसको अपने मौत का कोई ठिकाना नहीं था, एक चेतावनी बाद दूसरी चेतावनी, उसने बहुत ज्यादा कष्ट उठाया, बंदीगृह में डाला गया, जेलों में डाला गया, मारा गया, निंदित किया गया, अपमानित किया गया, हाकिमों के सामने खड़ा किया गया, सब कुछ हो सकता है इस बात को माना हो कि जब मुझे ये निश्चय हो जाएगा कि मैं यहां से वापस अपने स्थान अंताकिया में जा रहा हूं, तो मैं जरूर अपने सर मंडवाऊंगा। अब इसको हम किसी तरह से किसी रीति विधि या धर्म में नहीं ले सकते, इस बात को ध्यान रखिए। कई बार लोग कहते हैं, अरे पौलुस ने भी तो ऐसे किया था, पौलुस ने दो बार ऐसे किया, आगे भी हम देखेंगे, लेकिन उसके उद्देश्य बिल्कुल अलग था। किसी मरने के बाद व्यक्ति की बात नहीं करा, किसी मरने के बाद ऐसा नहीं करा, लेकिन उसके एक अपना था। कई बार हम कोई चीज के लिए मांग लेते हैं, अच्छा ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, संभवतः उसने ऐसे ही कहा था और इसलिए उसने इस चीज को करा। इसमें कोई आत्मिक सिद्धांत नहीं है, इसमें कोई ऐसी सिद्धांत नहीं है, लेकिन उसने इस चीज को इसलिए करा। खास बात थी, जब भी कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जब भी व्यक्ति कोई मन्नत के अनुसार अगर सर मुंडवाता था, तो उसको यरूशलेम में जाना पड़ता था, यरूशलेम से बाहर रह करके वो सर नहीं मुंडवा सकता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर वो यरूशलेम में नहीं है, यरूशलेम से बाहर है, और इसलिए हम इसको किसी प्रकार से उस व्यवस्था से या उस विधि से या उस रीति से नहीं जोड़ सकते, हमें इस बात को समझना अनिवार्य है। परंतु एक चीज उसके साथ है, आगे चलकर के लिखा हुआ है कि 19 पद में फिर वे इफिसियस पहुंचे, जहां उसने उन्हें छोड़ दिया, किसको? अकेला प्रिस्किला को, अकेला प्रिस्किला को वो इफिसियस में छोड़ जाता है, और वहां पर क्या होता है, वो आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से तर्क वितर्क करने लगा। जब लोगों ने उससे कुछ दिनों के लिए और रहने को कहा, तो उसने स्वीकार नहीं किया, परंतु विदा लेते हुए समय उसने कहा, यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब वो इफिसुस से जहाज द्वारा रवाना हुआ। अब उसने इफिसुस में अक्विला और प्रिस्किला को छोड़ दिया है और वो वापस अंताकिया जा रहा है। और तब हम 22 पद पढ़ते हैं, जब वो कैसरिया में उतरा तो उसने ऊपर चढ़कर कलीसिया से भेंट की और फिर नीचे उतरकर अंताकिया चला गया। ये नीचे उतर मतलब स्थान की बात है, कोई यहां पर है, कोई आगे है, कोई पीछे है, तो इस तरह बना हुआ था, तो उसी तरह से वो पहाड़ पर्वत या नीचे उस तरह से को संबोधित कर रहा है। जब हम इतिहास और ज्योग्राफी को देखते हैं तो हमें मालूम चलता है। लेकिन वो अंताकिया वापस हो गया। अब अंताकिया में उसकी दूसरी मिशनरी यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं जिस विषय पर आना चाह रहा हूं, पर कौन कहां पर है? अकेला प्रिस्किला इफिसुस में है, उस विषय पर मैं आना चाह रहा हूं। यद्यपि कुछ समय बाद पौलुस तीसरी मिशनरी यात्रा को शुरू करता है, तीसरी मिशनरी यात्रा को शुरू करता है जो 23 पद से है, तथा वहां कुछ समय और व्यतीत करके उसने विदा ली और गलातिया रुकिया प्रदेशों का भ्रमण करते हुए वो सब चेलों को स्थिर करता रहा, ये काम करता रहा। और फिर बाद में वो इफिसुस पहुंच गया। 19वें अध्याय में हम देखते हैं वो इफिसुस पहुंचा है। लेकिन 24 से लेकर के 28 पद तक बीच में अकेला प्रिस्किला इफिसुस में है, और इफिसुस में रह करके अब यहां एक और तस्वीर को हम देखते हैं जो अकेला प्रिस्किला के बारे में है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहां पर अकेला प्रिस्किला एक आराधनालय में जाते हैं या एक सभा में जाते हैं, और वहां पर अपुल्लोस एक प्रचारक है, प्रभु का सेवक है, अच्छा प्रचारक है, उसका नाम है, वो अच्छा था, कुशल वक्ता था, पवित्र शास्त्र को भी अच्छी तरह जानता था, परमेश्वर के मार्ग को अच्छी तरह सिखाता था। 24 पद से लिखा हुआ है, फिर अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो कुशल वक्ता तथा पवित्र शास्त्र में निपुण था, इफिसुस में आया। वो इफिसुस में आया है, अकेला प्रिस्किला इफिसुस में है, और तब वो कह रहा है, आया, इस मनुष्य को प्रभु के मार्ग की शिक्षा दी गई थी, इसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा को पाया था। अब कैसे पाई थी, किसने पाया, लेकिन बात आप समझिएगा, वो बड़े आत्मिक उत्साह से भर कर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, पर वो केवल यीशु के बपतिस्मा के विषय में जानता था। क्यों? यीशु के विषय में पढ़ा रहा है क्योंकि उसने यूहन्ना से सुना था कि मेरे बाद एक और आएगा जो यीशु है और वो मेरे से शक्तिशाली था, लेकिन उसने अभी तक उस बपतिस्मे के बारे में नहीं जाना था जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पिता ने कहा था, तुम जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जीवन के अंत तक में तुम्हारे साथ हूं, मत्ती उसका 28 अध्याय 18-19-20 पद। तो यहां पर कुशल है, अच्छा है, जोश में है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी कुछ चीज का अभाव है। और इसलिए अपुल्लोस, क्योंकि बहुत सारे लोग अपुल्लोस के शिष्य बन चुके थे, जब हम कुरिन्थियों में आते हैं तो कुरिन्थियों में पौलुस इसीलिए कहता है, कुछ अपने आप को अपुल्लोस का कहते हैं, कुछ अपने आप को पौलुस का कहते हैं, कुछ अपने आप को कैफा का कहते हैं, कैफा पत्रस है। तो जैसे यूहन्ना के जो शिष्य थे, वो यूहन्ना मर गया है, लेकिन अब यह यूहन्ना का अनुयायी था और यूहन्ना के नए होने के बारे में यूहन्ना के बारे में ज्यादा प्रचार करता था, और इसलिए अब इसके पीछे भी लोग हो गए थे और वो लोग यूहन्ना के शिष्य बन चुके थे अपुल्लोस के कारण। यीशु के बारे में वर्णन तो करता था लेकिन पूरा सुसमाचार उसको नहीं मालूम था, यीशु कौन है, यीशु क्यों आया, यीशु ने क्या करा, ये सब कुछ उसको नहीं मालूम था। और इसलिए वो यीशु के बारे में कुछ तो बोलता था लेकिन लिखा हुआ है वो सब कुछ होता है, यीशु के विषय में ठीक सुनाता और सिखाता था, पर केवल उसके सामने यूहन्ना के बपतिस्मे बारे में बताता था। हाँ, यूहन्ना यीशु ऐसा है, ऐसा है, लेकिन वो ये नहीं कहता था कि ठीक है तुम्हें आगे चल करके अब तुमने विश्वास किया है तो प्रभु यीशु मसीह में होकर उसके नाम से तुम्हें बपतिस्मा लेना है। और तब क्या हुआ, तब प्रिस्किला अकेला ने उसको सुना। अब प्रिस्किला अकेला का एक और रोल यहां पर देखते हैं। पहले भाग में हमने देखा था एक ऐसा परिवार जो पौलुस के साथ खड़ा हुआ है, पौलुस की सहायता कर रहा है, पौलुस के साथ जोखिम उठाने तैयार है, पौलुस के लिए आनंद का कारण है, पौलुस के लिए सेवा में सहयोगी है, सब कुछ है। लेकिन अब ये यहां पर हम दूसरा स्थान इसको देखते हैं किस प्रकार से उसका जीवन है। कह रहे हैं वो आराधनालय में निर्भरता से बोल रहा, परंतु जब प्रिस्किला और अकिला ने उसकी सुनी तो उन्होंने उसे अलग ले जा करके परमेश्वर के मार्ग के विषय में और भी ठीक ठीक समझाया। अब क्या करा इन लोगों, क्योंकि अकिला प्रिस्किला बहुत समय तक पौलुस के साथ रह लिए थे, उन्होंने सबसे पहले रोम में सुसमाचार सुना था और शायद विश्वास में बहुत अधिक आगे बढ़ गए थे, परिपक्वता उनके जीवन में आ गई थी, परमेश्वर के वचन का ज्ञान उनके जीवन में आ गया था और अब पौलुस के साथ रहकर वो और अधिक परिपक्व हो गए थे और तब वो इस पौलुस अपोलुस की शिक्षा को परखने लगे। अब इन्होंने अपोलुस की शिक्षा को परखा है। मेरे प्रियो, जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई में परिपक्वता में बढ़ते चले जाएंगे उतना अधिक आप परमेश्वर के वचन को परखेंगे और आपके परमेश्वर आपको मुझे परमेश्वर के वचन को परखना सीखना है, तभी आप झूठे शिक्षा से बचेंगे, तभी आप भरमाए जाने से बचेंगे, तभी शिक्षाओं को तोड़ मड़ो से बचेंगे। और हाय आए दिन एक नई शिक्षा लेकर कुछ लोग खड़े आते हैं, नई शिक्षा लेकर लोग खड़े आते हैं और इससे परमेश्वर के वचन का ज्ञान का होना बहुत अधिक अनिवार्य है। और यहां पर इन्होंने कितने सुंदरता से लिखा है, वो उसको अलग लिखा है। सम्मता उन्होंने कहा है, अपोलोस बहुत अच्छा हुआ आज आपकी मीटिंग में हम सुबह सुबह थे, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत जोश से प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा था, आइए शाम को आज हमारे साथ आइए, एक कप चाय पीजिए, हम बैठेंगे कुछ बातचीत करेंगे। और तब बुलाया होगा, तब बैठ के अपोलोस आप बचा बता तो रहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ न केवल उसको विश्वास के साथ प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना है, उस पर विश्वास करना है, लेकिन बपतिस्मा लेना है और बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से होना है। ये उन्होंने समझाया कि केवल विश्वास जरूरी नहीं है, विश्वास के साथ बपतिस्मा भी जरूरी है। और मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर के वचन बार बार है, जो व्यक्ति विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, जो व्यक्ति विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। विश्वास के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं और बपतिस्मा द्वारा हम उसकी आज्ञा पालन को दर्शाते हैं और हम इस बात को दर्शाते हैं अब मेरा जीवन पूरी रीत से प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित है, प्रभु यीशु मसीह से समर्पित है। तो ये अभी तक इस चीज पे नहीं आए थे और अकेला प्रिस्किला ने बहुत सुंदर रीति से इस चीज को उनको समझाया है, लिखा है उसके विषय में ठीक ठीक समझाया। और तब आगे चल के हम देखते हैं 27 पद, जब उसने उस पर अखाया को जाना चाहा तो भाइयों ने उसे प्रोत्साहित किया और चेलों को लिखा कि उसका स्वागत करें। किसका स्वागत करें? पौलुस को स्वागत करें। अब ये भाइयों के बीच में एक ऐसा नाम हो गया, एक ऐसा व्यक्ति कि कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। जरूर वचन के ज्ञान में उसको कुछ अभाव था, लेकिन उसने वचन की शिक्षा को प्राप्त कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया, उसको समझ लिया, उसको जान लिया, उसको देख लिया। मेरे प्रियो, हम इससे पहले कुरिन्थी कलीसिया को देखते हैं और जब हम कुरिन्थी के पत्री में जाते हैं जो पौलुस लिखता है तो वहां पर भी अपोलुस का वर्णन आता है, अर्थात उस समय का व्यक्ति था जो कुरिन्थी कलीसिया जब आरंभ हुई थी तो वहां पर भी उसने यीशु के समाचार को सुना होगा और उसी समय से वो सेवा में शामिल हो गया, लग गया होगा, क्योंकि पौलुस भी 1.5 साल तक रब तक वहां रहा, उसके बाद अब और समय भी व्यतीत हो गया था। और तब कहता है, और जब वहां पहुंचा तो उसने उन लोगों को की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के द्वारा विश्वास किया था, जिन्होंने अनुग्रह के द्वारा विश्वास किया था। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनता है, लेकिन बाइबल कहती है रोमियो उसके 10:17 पद में, और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, लेकिन उस विश्वास को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसके अनुग्रह से मैं और आप बचाए जाते हैं, उसके अनुग्रह से मैं और आप विश्वास करने पाते हैं, उसके अनुग्रह और दया से होकर के मुझे और आपको पापों की क्षमा मिलती है। और वो कहता है जिसने अनुग्रह के द्वारा विश्वास किया है। मेरे प्रियो, सच है, अब ये अपोलुस का जीवन एक और उत्साही जीवन था। किस रीति से वो परमेश्वर के लोगों को उत्साहित कर रहा है, उनकी सहायता कर रहा है। 28 पद में, क्योंकि उसने पविश्वास से प्रमाण देकर कि यीशु ही मसीह प्रबलता के साथ यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर किया। प्रमाण देकर के, क्या प्रमाण दिया? यीशु मसीह, यीशु ही मसीह है, वो प्रमाण दे रहा है। ओ, वो व्यक्ति है, वो इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जुटा, तुमने तो उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला था। पौलुस की यही साक्षी थी, पतरस की साक्षी थी, अपोलुस की भी साक्षी है। इन सारे प्रेरितों की और इन सारे सेवकों की साक्षी थी, यीशु मसीह वो है जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिला उठाया, प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। मेरे प्रियो, ये सच है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। और मैं पिछली बार भी बोला था कि यहूदियों के लिए सबसे कठिन बात स्वीकार करना ये थी कि वो यीशु को मसीह करके नहीं स्वीकार कर सकते। यीशु कोई गुरु हो सकता है, इसीलिए बार बार उसको रब्बी और गुरु करके संबोधित किया उन्होंने, रब्बी और गुरु करके संबोधित किया। इसीलिए यहूदा स्क्रूटी ने भी प्रभु यीशु मसीह को केवल रब्बी और गुरु करके संबोधित किया, कभी उसको प्रभु नहीं करा, लेकिन क्योंकि उसके जीवन जैसा काम होना चीता नहीं रहा। और इसलिए लेकिन यहां पर एक अपोलोस है, परमेश्वर के वचन को जान गया है, उसने इन अक्विला प्रिस्किला के द्वारा जो कुछ भी उनको समझाया गया उनको विश्वास के साथ ग्रहण किया है। मेरे प्रियो, ये सच है, कितना सुंदर लगता है। अब किस प्रकार से एक परिवार कैसे पौलुस के कार्य में, सुसमाचार के कार्य में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, सुसमाचार की बढ़ोतरी का कारण बन रहा है, और उसके द्वारा चेन कैसे आगे बढ़ती चली जा रही है, चेन आगे बढ़ती चली जा रही है। और मैं बार 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 इस बात कहना चाहता हूं, काश कलीसिया में ऐसे लोग पाए जा सके जो अकेला प्रिस्किला के समान हो। मैंने कहा अकेला, उसका नाम ईगल है, उकाब है, मनोहर है, काश ऐसा जीवन पाया जाए। और तब हम देखते हैं, मेरे प्रिय, जब हम सारी बातों पर विचार करते हैं तो प्रिस्किला अकेला का जीवन मेरे और आपके लिए एक अलग साक्षी कारण है। आज अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमारी कलीसिया में अकेला प्रिस्किला की आवश्यकता है। मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए, जब पति पत्नी चर्च में आते हैं आप अपने लिए प्रार्थना करिए, थोड़ी देर के लिए विचार करिए, क्या पति पत्नी अकेला प्रिस्किला के समान है? क्या सच में आप वचन से प्रेम करते हैं? क्या कलीसिया के साथ आप सेवकों के साथ खड़े हुए हैं? क्या सच में आपके जीव में समर्पण है जैसे हमने देख लिया इसके बारे में, और जिसके कारण पौलुस बहुत अधिक आनंदित था। और पौलुस कहता है तुम उसका स्वागत करना, तुम उसका स्वागत करना, तुम उसका अभिनंदन करना। मेरे प्रियो, कितने सुंदर बात है। प्रश्न यह है, ऐसे परिवार जो सेवकों के साथ खड़े हो सके, जो सेवा में कांधे से कांधा मिलाकर सहायता कर सके, जो अपना कार्य करते हुए सुसमाचार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सके। आज आप जिस कलीसिया में भी, जिस कलीसिया में, चाहे कहीं भी, चाहे लखनऊ में, चाहे बाराबंकी में, सुल्तान में, कहीं पर, उन्नाव में, कहीं पर भी, सुसमाचार की सेवा के प्रति, सेवकों के प्रति आपका समर्पण, आपका व्यवहार कैसा है, ये आपको सोचना है। आज मुख्य विचार, एक परिवार के रूप में, एक पति पत्नी के रूप में, सेवा के प्रति, सेवकों के प्रति मेरा और आपका समर्पण और व्यवहार कैसा, जिस कलीसिया में आप हैं, जिस कलीसिया में आप हैं। आज कलीसिया में अकेला और प्रिस्किला की आवश्यकता है, लेकिन अंत बात एक चीज मुख्य थी जो अपोलुस समझ गया, अपोलुस ने जान लिया, वो ये जान लिया यीशु मसीह प्रभु है, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद बपतिस्मे द्वारा परमेश्वर को आदर सम्मान दे सकते हैं। तो उद्धार प्राप्ति के लिए केवल यूहन्ना की शिक्षा काफी नहीं, यूहन्ना ने शिक्षा दी थी मन फिराओ, पश्चाताप करो, लौट आओ, यूहन्ना ने शिक्षा दी थी, यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा थी, यही शिक्षा प्रेरित काम में दी थी, लेकिन वो पाक काफी नहीं थी। यीशु मसीह के आने के बाद मन फिराना, पश्चाताप करना और विश्वास के द्वारा बपतिस्मा लेना। इसलिए प्रेरित काम दूसरे अध्याय में हम इस बात को स्पष्ट पाते हैं, जब उनके मन छिद गए तो पूछ ले हम क्या करें, हम क्या करें, प्रेरित पूछ ले, उन्होंने कहा विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और यीशु मसीह नाम से। सो मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आपने विश्वास किया है और यदि आज तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, तो आपके लिए अवसर है कि आप अपने विश्वास के प्रति को प्रमाणित करें उस बपतिस्मा द्वारा। लेकिन इसके साथ साथ खास बात यह, प्रेरित 18 अध्याय पौलुस किस तरह से कुरिन्थियों में आता है और कुरिन्थियों में किस प्रकार से कलीसिया की स्थापना होती है। इफिसियों में उसने ज्यादा काम नहीं किया, रुका कुछ दिन, लेकिन अभी 19वें अध्याय में हम इफिसियों में आके देखेंगे, उसने सुसमाचार सुनाया, कुछ समय रहा, उसके बाद चला गया। अब 19वें अध्याय में फिर तीसरी जर्नी में हम देखेंगे वो इफिसियों में आता है, और तब इफिसियों में आकर के वो काफी समय रहता है सुसमाचार का कार्य करता है, और फिर वो 19 अध्याय में देखेंगे तो किस रीति से। तो प्रेरित काम की 16, 17, 18, 19 ये चार अध्याय ऐसे अध्याय हैं जिसमें मुख्य रीति से कलीसियाओं की स्थापना का वर्णन है। 16 अध्याय में फिलिपी की कलीसिया की स्थापना है, फिलिपी की कलीसिया स्थापना है। 17 अध्याय में हम क्रुंती कलीसिया की स्थापना को देखते हैं, क्रुंतियों के साथ साथ हम एथेन को देखते हैं, बिरिया की कलीसिया को देखते हैं, फिर उसके बाद फिर 18 अध्याय में फिर क्रुंती कलीसिया को देखते हैं, लेकिन थोड़ा समय के लिए हम इफिसस को देखते हैं, पर 19 अध्याय में फिर इफिसस की कलीसिया को देखते हैं कि वहां पर किस तरह। सबसे पहले दूसरे अध्याय में यरूशलेम की कलीसिया की स्थापना हुई, लेकिन अब सुसमाचार प्रतिज्ञा के अनुसार छोर छोर तक जा रहा है, तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे और यरूशलेम सामरिया यहूदिया और दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। और तब हम देखते हैं किस प्रकार से जैसे हम 19 अध्याय समाप्त करेंगे तो 20 अध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है उस सेवकों के बारे में। तब उसके बाद हम पौलुस के रोम में किस प्रकार से उसने संघर्ष का सामना किया उस पर आगे चलकर हम विचार करेंगे। तो ये प्रेरित काम का पुस्तक का बहुत सुंदर चित्रण है जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। अंत में क्या मैं और आप आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें ऐसा जीवन दे दीजिए जो प्रिस्किला और अक्विला के समान हो, प्रभु मुझे और आपको ऐसा जीवन दे दे जो अपोलुस के समान हो। परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर संचालन करता है, परमेश्वर उद्धार करता है, परमेश्वर न्याय करता है, ताकि हम उसके जीवन को संसार में व्यतीत करते हुए उसके उस मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके कि सुसमाचार पर विश्वास करो और सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाओ। सुसमाचार पर विश्वास करो और सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाओ। सुसमाचार स्वयं यीशु है, यीशु है, यीशु है। आइए हम प्रार्थना।